26 जुलाई दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद अनशन तोड़ने का फैसला किया, मणिपुर में लड़ेंगी चुनाव।
15 साल हो गया वो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, अभी तक भारत सरकार सुन नहीं रहा है उसका, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि एक और साल एक्सटेंड करे या 5 और साल एक्सटेंड करे तो उसको सुनेगा।
देखेंगे क्यों नाराज हैं दलित कार्यकर्ता नाटू भाई परमार, जिन्होंने विरोध का उग्र तरीका अपनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया।
मोदी साहब इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ट्वीट नहीं करते। अगर अमिताभ बच्चन को कुछ होता है तो उस वजह से और ट्वीट करते।
रियो टीम का एक और सदस्य डोप टेस्ट में फेल, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, इकबाल अहमद से। मणिपुर में 16 साल से एफ्सपा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला अपना उपवास तोड़ेंगी। उन्होंने 9 अगस्त को भूख हड़ताल खत्म करने और अगले साल मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इरोम शर्मिला ने पत्रकारों से कहा कि एफ्सपा के खिलाफ मैं पिछले 16 सालों से अकेली लड़ रही हूं, किसी सत्ता राजनीतिक शक्ति और समर्थन के बिना। मुझ पर 309 का केस दर्ज किया गया, अब मैं चुनाव के माध्यम से अपनी लड़ाई को आगे ले जाऊंगी। उत्तरी फ्रांस के शहर रोएन में चाकू से लैस 2 हमलावरों ने एक चर्च में घुसकर एक पादरी की हत्या कर दी है। इस हमले के शिकार एक और व्यक्ति अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमलावरों ने पहले कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था, बाद में पुलिस ने उन दोनों को गोली मार दी। दोनों हमलावरों का संबंध चरमपंथी संगठन IS से बताया जा रहा है। वेटिकन चर्च ने इस हमले की निंदा की है। वेटिकन के प्रेस ऑफिसर ग्रेग बर्क ने एक बयान जारी कर कहा, ये बहुत ही दुखद है कि चर्च के अंदर इस तरह की घटना हुई। चर्च तो पवित्र स्थल होता है जहां भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाया जाता है। ये और भी खराब बात है कि इस हमले के पीड़ित एक बुजुर्ग पादरी हैं। हर चीज के विपरीत कम से कम चर्च को तो आप एक सुरक्षित जगह मान सकते हैं। वेटिकन के प्रवक्ता के शब्द। थाईलैंड में 3 प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने दक्षिणी थाईलैंड में सैनिकों और पुलिस के जरिए कथित तौर पर प्रताड़ना किए जाने की एक खबर प्रकाशित की थी। उनमें से एक एमनेस्टी इंटरनेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर उन पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो उनको 2 साल कैद की सजा हो सकती है, और अगर कंप्यूटर अपराध के भी वे दोषी पाए गए तो और 3 साल की सजा हो सकती है। ब्रिटेन हेट क्राइम के मामले में पुलिस जिस तरह बर्ताव करती है, ब्रिटानी सरकार ने उस पूरी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। जनमत संग्रह में यूरोपीय यूनियन छोड़ने के ब्रिटानी फैसले के बाद वहां नस्ली भेदभाव की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 4 हफ्तों में पुलिस के सामने 6,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दक्षिणी चीन में स्थित तिब्बती बौद्ध इंस्टीट्यूट को चीनी अधिकारी तोड़ रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट को बौद्ध धर्म की शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में शुमार किया जाता है। वहां से आ रही तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी अधिकारियों ने दर्जनों ऐसी इमारतें गिरा दी हैं, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इमारतों की मरम्मत की जा रही है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। मणिपुर की जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी एफ्सपा के खिलाफ 16 सालों से चल रहे अपने अनशन को खत्म करने का फैसला किया है। आज इम्फाल की एक निचली अदालत को उन्होंने बताया कि वो 9 अगस्त को अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और अपने मंगेतर से शादी भी करना चाहती हैं। सलमान रवि की रिपोर्ट।
Do you know Iram Sharmila? Have you heard her name? She's a symbol of struggle for Manipur. If you don't, that's a shame.
Iram Sharmila का नाम न सिर्फ मणिपुर के घर घर में लिया जाता है, बल्कि उनके संघर्ष को संगीत के माध्यम से भी कार्यकर्ता दूर दूर तक फैलाने का काम करते रहे हैं। This is a song for peace and freedom.
is a song for hope. This is a song for tomorrow, sung today.
आज इम्फाल में पेशी के दौरान इरोम ने बताया कि वो आगामी 9 अगस्त को अपना अनशन समाप्त कर देंगी। साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने और शादी करने की इच्छा भी जाहिर की है। इस तरह की इच्छा उन्होंने पहले भी जाहिर की थी, मगर उन्होंने कोई तारीख तय नहीं की थी। पिछले मई महीने में उनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने मंगेतर से शादी करने की इच्छा जताई थी।
मी आल्सो जस्ट एज अ मुंडन बीइंग आई हैव डिजायर ऑफ बीइंग अ ह्यूमन एंड आवर पीपल्स डिलीबरेट इग्नोर।
इरोम शर्मिला कह रही थीं कि वो आम लोगों की तरह ही जिंदगी जीना चाहती हैं। वो ये भी कह रही थीं कि अपने लोगों की आवाज उठाने में उन्हें अगर सफलता मिलती है तो वो शादी भी करना चाहेंगी। हालांकि मणिपुर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफ्सपा हटाने की मांग करने वालों को झटका जरूर लगा, जब इरोम शर्मिला ने 16 सालों से चलाए जा रहे अनशन को खत्म करने की घोषणा की। मगर उनका कहना है कि इरोम शर्मिला ने अपने अनशन से जो हासिल करना चाहा था वो उन्होंने कर लिया। उनके करीबी माने जाने वाले कार्यकर्ता बबलू लोयन टॉम्बम का कहना था,
15 साल हो गया वो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, अभी तक भारत सरकार सुन नहीं रहे उसका वो इशू को
जी।
तो ये कोई गारंटी नहीं है कि एक और साल एक्सटेंड करे या 5 और साल एक्सटेंड करे तो उसको सुनेगा। जो भी अचीव कर सकता है एक ये मौत ऑफ प्रोटेस्ट की तरफ से वो तो हो ही गया, तो अभी वो ये स्ट्रगल का जो तरफ जो है वो चेंज करना चाहता है, एक नॉन पॉलिटिकल स्ट्रगल से वो थोड़ा पब्लिक के साथ वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके वो लड़ना चाहता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वट एवर द रेस्ट ऑफ द लाइफ दैट ही हैज लेफ्ट विद He want to change and try another method, so one can fully understand where it is coming.
वहीं मणिपुर के एक दूसरे कार्यकर्ता ओनिल शेत्रियम का कहना था,
Decision she said is that so हम अभी तो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में ज्वाइन करना चाहिए, उसके बाद हम अफवाह के फाइट करेंगे।
इरोम शर्मिला 2 नवंबर वर्ष 2000 से अनशन पर हैं और इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। 2014 में दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने के लिए उन पर आत्महत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। बहरहाल उनके राजनीति में आने के फैसले की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, मगर उनके करीबी इससे खुश जरूर नजर आ रहे हैं। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
पचहत्तर वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब भारत से निकला जाए बाहर, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में राष्ट्रपति पद का नामांकन पाने में हिलेरी क्लिंटन के प्रतिद्वंदी रहे बर्नी सैंडर्स ने हिलेरी क्लिंटन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का जबरदस्त समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिलेरी को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की समस्याओं का वास्तविक समाधान उन्हीं के पास है। हालांकि सैंडर्स के कुछ समर्थक अभी भी हिलेरी क्लिंटन का विरोध कर रहे हैं। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय ने ये रिपोर्ट भेजी है।
फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की एक हंगामेदार शुरुआत। बर्नी सैंडर्स के चाहने वालों को हिलेरी के साथ लाने की कोशिश पहले से ही मुश्किल साबित हो रही थी, और कन्वेंशन के ठीक एक दिन पहले जब विकीलीक्स के जरिए ऐसे ईमेल सामने आए जिसमें डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के दिग्गज सैंडर्स के खिलाफ बातें करते दिखे तो लगा जैसे आग में घी डाल दिया गया हो। कन्वेंशन शुरू होने से पहले सैंडर्स ने अपने हिमायतियों से पार्टी की बेहतरी के लिए एकजुट होने की अपील की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनकी इंकलाबी मुहिम उनके हाथ से निकल गई हो।
We have got to defeat Donald Trump and we have got to elect Hillary Clinton and Tim Kaine.
सैंडर्स ने ट्रंप को हराने की बात की और हिलरी क्लिंटन को जिताने की बात की, लेकिन भीड़ ने या तो बर्नी बर्नी के नारे लगाए या फिर हिलरी का नाम आते ही उन्हें भी हूट करना शुरू कर दिया। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की चेयर ने ईमेल्स के सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे थे और कन्वेंशन की शुरुआत के ऐलान में भी शोर शराबा हुआ।
I hereby call the 47th Quadrennial Democratic National Convention.
डर था कि पार्टी के नामी गिरामी लोग जब मंच पर उतरेंगे तो कहीं उनके खिलाफ भी नारे लगने लगे, लेकिन फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की बातों ने भीड़ पर जैसे जादू का काम किया। उनके ये कहने पर कि हिलरी क्लिंटन की बदौलत आज उनकी बेटियां भी इस मुल्क में किसी भी मुकाम तक पहुंचने का ख्वाब देख सकती हैं, तो तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं।
Only one person who I believe is truly qualified to be president of the United States, and that is our friend Hillary Clinton.
हिलरी क्लिंटन की इससे पुरजोर हिमायत नहीं हो सकती थी, लेकिन सबकी नजर बर्नी सैंडर्स पर थी कि वो क्या कहते हैं जिससे उनके चाहने वाले पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने पहले वो सभी बातें की जिनसे लाखों लोग प्राइमरी इलेक्शंस में उनके साथ खींचे चले आए, अमरीका में इंकलाब लाने की बातें दोहराई और फिर हिलरी क्लिंटन का पूरी तरह से साथ देने का ऐलान किया।
हिलरी क्लिंटन will make an outstanding president and I am proud to stand with her tonight.
उनके चाहने वालों में से कई रो रहे थे, बर्नी सैंडर्स फॉर प्रेसिडेंट के पोस्टर भी लहरा रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि सैंडर्स ने पार्टी को एकजुट करने के लिए जो किया उसके लिए इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था। वो कितने कामयाब रहे इसका अंदाजा शायद आज कन्वेंशन के फ्लोर पर मिलेगा, जब हिलरी क्लिंटन को पार्टी की उम्मीदवारी सौंपने के लिए आखिरी वोटिंग होगी और उनके नाम पर पार्टी की मुहर लग जाएगी। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, फिलाडेल्फिया।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी के कल्याणपुर इलाके में पुलिस ने आज सुबह देर तक हुई मुठभेड़ में 9 चरमपंथियों को मार दिया। हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव इस समय ढाका में हैं। मैंने उनसे पूछा कि आज सुबह से वहाँ क्या कुछ घटित हो रहा है।
दरअसल रेहान साहब, जो प्रमाण सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है ढाका पुलिस की कल देर रात से, वो काफ़ी प्लान्ड कार्रवाई थी। और जैसा कि तमाम पुलिस के अफसरान यहां पर ढाका में बता रहे हैं कि उनके पास खास तौर पर इंटेलिजेंस थी जिसकी बिना पर उन्होंने ये कार्रवाई की। जो ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर हैं असदुज्जमा मियाँ, उन्होंने आज अभी कुछ देर पहले पत्रकारों को संबोधित किया है और उन्होंने कहा कि जो 9 चरमपंथी मारे गए हैं रात को इस कार्रवाई में, उनके पास से काले झंडे मिले हैं, ऐसा ढाका पुलिस कमिश्नर के हवाले से बताया गया है। और उन काले झंडों पर वो बताते हैं कि अल्लाह अकबर लिखा हुआ था। और वो बताते हैं कि पुलिस की टुकड़ियों ने देर रात जब उस बिल्डिंग में कार्रवाई करनी शुरू की तो जो कथित चरमपंथी थे उन्होंने पुलिस के मुताबिक अल्लाह अकबर कहते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू की। बहरहाल इस बीच जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने ये भी बताया है कि इन मारे गए लोगों के पास से 13 हथगोले मिले हैं, एक तलवार मिली है, बंदूक और मैगजीनों के मिलने की बात उन्होंने कही है। जो ख़ास बात है वो ये है कि इनमें से एक चरमपंथी जो है उसको घायल अवस्था में पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और जाहिर है वो भी घायल बताया गया है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोपहर में राष्ट्र को संबोधन किया।
एक धर्मेर नाम निये মানুষ খুন করা এবং কত নৃশংসভাবে হত্যা করা মানে তা কল্পনাও করা যায় না।
শেখ হাসিনা কে রই থি কি জো চরমপন্থী মারে গয়ে হ্যায় উনকে উপর आला दर्जे की खुफिया जानकारी मिली थी बांग्लादेश सरकार को, बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों को। और जो तेज़ और चुस्त दुरुस्त कार्रवाई हुई है शेख हसीना के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से, उसके चलते बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी आपदा से बचा लिया गया है, एक बहुत बड़े हमले से बचा लिया गया है, ऐसा प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार कहती भी रही हैं, लोगों को बांग्लादेश में बहुत मुस्तैद रहने की ज़रूरत है क्योंकि पहले भी कथित चरमपंथी हमलों का डर जताया जा चुका है। लेकिन कल रात की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में जो पुलिस ने कुछ बातें बाहर बताई हैं पत्रकारों को, वो थोड़ी जरूरी हैं बतानी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो 9 व्यक्ति मारे गए हैं उन सभी की उम्र 20 से 25 साल थी। वो कहते हैं उन्होंने अच्छे जूते स्नीकर्स पहन रखे थे और वो कहते हैं कि वो काफ़ी पढ़े लिखे बैकग्राउंड से लग रहे हैं। यानी जो पुलिस ने आज सुबह ये बात कही थी कि जो गुलशन में हमला हुआ था, गुलशन के कैफ़े में 1 जुलाई को जो एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, चरमपंथी कार्रवाई थी, उससे इन लोगों का कोई ना कोई संबंध हो सकता है। वैसा लगता है कि पुलिस जिस हिसाब से दावा कर रही है वैसा लगता है कि हो सकता है।
ये थे ढाका से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। दक्षिणी गुजरात के मोटा समाधियाला गांव में कुछ दिन पहले मरी गाय का चमड़ा खींचने पर 4 दलित नौजवानों की सरेआम पिटाई की गई। इससे दलित समुदाय में बेचैनी है। इसके बाद 18 जुलाई को सुरेंद्र नगर जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर मरी हुई गायें फेंक कर दलित समुदाय ने अपने गुस्से का एक नए तरीके से इजहार किया। पर कौन थे वो लोग जिन्होंने विरोध का ये शांतिपूर्ण मगर साथ ही उग्र तरीका ढूंढा? नवसृजन ट्रस्ट से जुड़े नाटू भाई परमार वो दलित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ कलेक्टर के दफ्तर के बाहर मरी गायें फेंकने का फैसला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। हमारे साथी राजेश जोशी ने नाटू भाई परमार से पूछा कि ऐसा करने का विचार आपके मन में कैसे आया?
ये हुआ ऐसा है कि जो गिर सोमनाथ जिला का जो ऊना तहसील है और जो मोटा समाडियाला गांव है, वहाँ 4 दलित लड़के जो मृत गाय का चमड़ा निकाल रहे थे और उसके साथ में दादा भी थे, उसको भी बुरी तरह से मारा और पीटा, उसका वीडियो वायरल हुआ। तो सतत ये वीडियो देखने के बाद हमको लगा कि इस तरह का अत्याचार हमारे समाज पे हो रहा है, तो ये अभी ये काम नहीं करना चाहिए। जो वीडियो वायरल हुआ न्यूज़पेपरों में आया तो हमने जो जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टेक्ट है जो आगे वाले स्वयंसेवक सभी को बताया और ग्रुप मीटिंग शुरू की और जहाँ जहाँ मीटिंग करते थे वहाँ लैपटॉप पे हम ये वीडियो दिखाते थे कि इस तरह का अत्याचार हमारे समाज पर हुआ है।
अच्छा, तो फिर उसके बाद मरी हुई गायों को सरकारी दफ्तरों के सामने डालने का फैसला कैसे हुआ?
मैंने जब परमिशन ली रैली की तो इसमें मैंने 10 वाहन रखा था, 10 वाहन लेके हम कलेक्टर के पास जाएंगे, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि इसमें क्या लाएंगे। हम 3 लोग जानते थे। लास्ट में जब रैली शुरू हुई तो हमने सभी गांव से ये मंगवाई थी गाय सब मरी हुई, कलेक्टर के सामने हमने सभी वाहन उसके कंपाउंड में रख दिया और वहां सभा की और जो गाय मरी हुई गाय थी वो सब नीचे डाल दी और बोला कि हजारों साल से वो हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज से हम तय करते हैं कि ये जो हम मृत पशु का निकाल नहीं करेंगे और बुलाइए वो जो शिव सैनिक वाले हैं और जो गौ रक्षक है उसको बुलाइए कि उसका निकाल कल वो करे, अन्यथा जो कलेक्टर साहब है वो उसका निकाल करे, हम आज से ये मृत गाय का काम नहीं करने वाले हैं।
नाटू भाई एक बात बताइए, इससे पहले भी गाय को लेकर के पूरे भारत में कई जगहों पर घटनाएं हुई हैं, जब ये कुछ हो रहा था तब दलित समाज और आप लोग खामोश क्यों थे?
जो रोहित विमला के साथ हुआ था वो जो गोबर खिलवाया उसका भी हमने विरोध किया, लेकिन इस तरह से जो ये जो विरोध हो रहा है और जो ऊना में जो घटना घटी है तो उस मुद्दे से सीधा दलित समाज से ताल्लुक है।
जब निशाने पे अगर मुसलमान होते हैं तो प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों नहीं होती है?
मैं ऐसी बात है ना कि जब यहाँ गुजरात में कौमी दंगा हुआ तो उस वक्त भी हमने विरोध किया था, ये नहीं होना चाहिए, ये मानवता के विरुद्ध है।
अभी ये बताइए कि दलितों के लिए गुजरात में, खासतौर पे गुजरात जहाँ पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो वहाँ दलितों की स्थिति के बारे में बताइए, दलित कैसी स्थिति में रहते हैं, दूर गांव में कस्बों में क्या स्थिति है?
आज भी दलित की स्थिति बहुत दयनीय है, मंदिर में हमको प्रवेश नहीं मिलता, आज भी गांव में जो मध्यान्ह भोजन की जो व्यवस्था है, प्राथमिक शाला में पाठशाला में मध्यान्ह भोजन में हमारे बच्चे को अलग खाना खिलाया जाता है, आज भी जो सार्वजनिक जगह है वहाँ दलित नहीं जा सकते।
तो इसके खिलाफ तो आप पुलिस में जा सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं?
इसके विरुद्ध में कई गांव में हमने फरियाद दर्ज की, तो जब मंदिर प्रवेश करने की बात आती है और फरियाद की तो बहिष्कार कर दिया कई सारे गांव में। आज भी गुजरात में हमारा बहिष्कार चल रहा है।
तो मंदिर में प्रवेश करना दलितों के लिए कितना जरूरी है, यानी समाज आपको अलग मानता है, तो उस मंदिर में जाने की ऐसी जरूरत आपको महसूस होती है क्या?
नहीं, जरूरत नहीं है मंदिर में। हम मानते हैं कि मंदिर में जाने से हमारा समाज का कोई उद्धार नहीं होने वाला, लेकिन क्या है कि हमको बंधारण में जो आरक्षण में अधिकार मिला है, समान हक मिला है, तो वही प्रस्थापित करने के लिए हम मंदिर में जाने की बात कर रहे हैं। हम भी इंसान है, हम भी मंदिर में जा सकते हैं, इस वजह से हम मंदिर में जाने की बात करते हैं। हमको भी समानता मिलनी चाहिए, हमको भी न्याय मिलना चाहिए।
नटू भाई, जब ये बात होती है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, संघ के लोग कहते हैं, बीजेपी भी उसको मानती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वगैरह को, हिंदू राष्ट्र में दलितों का क्या स्थान होगा, आपको क्या महसूस होता है, दलितों का क्या क्या जगह होगी हिंदू राष्ट्र में?
हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह तो सिर्फ लास्ट में ही आती है, सिर्फ हमको एक गिनती में ही, वो लोग कहते हैं कि वो सब हिंदू है, लेकिन हमको हिंदू मानते नहीं है।
मुसलमानों पर ये आरोप लगता है कि वो गौ मांस खाते हैं, क्या दलित समाज भी गाय का मांस खाता है?
वो जो परंपरा है वो हमको पसंद नहीं है, और ये परंपरा जो है वो हमने तय नहीं की थी, वो परंपरा इस देश की ज्ञाति व्यवस्था ने, जो हमने सदियों से हमारे साथ अन्याय और अत्याचार गांव के बाहर हमको रखते थे और हमको हमारे पूर्वजों को अपनाने नहीं देते, तो जो मरी हुई गाय का और मरे हुए पशु का मांस खाने की जो व्यवस्था हुई है, ये सभी उन्हीं के जो कहते हैं उनका हिंदू है, उन्हीं के पाप के वजह से हमारे पूर्वजों और हम अभी भी खा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी, स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्ववादी शिवसेना जो संगठन है, उनसे कैसा रिश्ता दलितों का रहेगा?
उससे जो रिश्ता है वो टूटेगा। आज भी जो मोदी साहब इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ट्वीट नहीं करते। अगर अमिताभ बच्चन को कुछ होता है तो उस वजह से वो ट्वीट करते है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद भी मोदी साहब एक भी शब्द नहीं बोले, तो सभी सारे समाज दुखी तो है ही।
दलित कार्यकर्ता नाटू भाई परमार से बात कर रहे थे, राजेश जोशी। ओलंपिक खेलों के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब भारत के दो खिलाड़ी खेलों के महाकुंभ के शुरू होने से लगभग सप्ताह भर के भीतर डोपिंग के शिकार हो गए। रविवार को पहलवान नरसिंह यादव और आज शॉट पुटर इंद्रजीत सिंह डोप टेस्ट में फेल हो गए। हालांकि इन दिनों उनका प्रदर्शन दमदार नहीं था, लेकिन इन दो मामलों के सामने आने से भारत के खेल जगत और खेल प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त।
अभी 74 किलो भार वर्ग में पहलवान नरसिंह पंचम यादव के डोप में फंसने की आग ठंडी भी न होने पाई थी कि आज रियो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल को एक और बड़ा झटका तब लगा जब शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह भी प्रतिबंधित दवा के सेवन के दोषी पाए गए। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके नमूने से छेड़छाड़ की गई है।
इस तरह की चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, और ईमानदारी से खेल रहे हैं तो के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा।
एशियाई चैंपियन इंद्रजीत सिंह को प्रतिबंधित स्टेरॉयड के सेवन का दोषी पाया गया है, जिसकी जानकारी नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने दी। उनका डोप टेस्ट 22 जून को हुआ था। अब इंद्रजीत सिंह से पूछा गया है कि क्या वे अपने नमूने की दूसरी यानी बी नमूने की जांच कराना चाहते हैं। अगर वो चाहें तो 7 दिन के अंदर इसकी जांच करानी होगी। अब अगर उनका बी सैंपल भी पॉजिटिव आया तो फिर उनके रियो जाने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दरअसल इंद्रजीत सिंह अपने निजी कोच के साथ अभ्यास करते हैं। इंद्रजीत सिंह ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत अमेरिका में अभ्यास किया। इंद्रजीत सिंह का नाम डोपिंग में सामने आने से 1964 में टोक्यो ओलंपिक में 110 मीटर बाधा दौड़ में 5वें स्थान पर रहने वाले और फिलहाल एथलीटों की चयन समिति के अध्यक्ष गुरबचन सिंह रंधावा ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा,
अनपढ़ आदमी है, इनके दिमाग में पैसा घूम रहा है, पैसा 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 पैसा, और इतना पैसा मिल रहा है कि मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड में कोई कंट्री इतना पैसा दे ही नहीं रहा। पोडियम ओलंपिक जो है इनको तो बहुत ज्यादा जी, इसको तो अमेरिका ट्रेनिंग के लिए भेजा, एक इसके साथ कोच भेजा, एक इसके साथ कोच का भाई जो था वो एडवाइजर भी भेजा, ये तो पहली दफा देखा है। पर्सनल ट्रेनिंग की उसकी क्या ट्रेनिंग थी, ये तो जो है उधर कोई कॉम्पिटिशन में तो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये तो एक किसान का बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। मैं चेयरमैन हूँ सिलेक्शन कमेटी का, हमें नहीं मालूम इसके वेयर बॉडी कहाँ था कहाँ नहीं था।
उल्लेखनीय है कि इंद्रजीत सिंह ने 2014 के इंचियोन एशिया खेलों में कांस्य से है और 2015 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि 2015 में ही बीजिंग में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो 11वें स्थान पर रहे थे, तब उन्होंने 19.52 मीटर तक थ्रो किया था। इंद्रजीत सिंह ने रियो जाने के लिए एक एथलीट के रूप में सबसे पहले क्वालिफाई किया था, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में रियो जाने से पहले डोप का शिकार होने वाले वो पहले एथलीट भी बन गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कोई और भारतीय खिलाड़ी डोपिंग में नहीं फंसेगा।
शॉर्ट पुटर इंद्रजीत सिंह डोप टेस्ट में फेल। रविवार को जब नरसिंह यादव का नाम डोपिंग में सामने आया तो सभी को हैरानी के साथ दुख भी हुआ। खुद नरसिंह यादव की आवाज में भरोसा और दम सुनाई दिया, लेकिन अब शायद उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है, ऐसा महसूस किया हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने, जो आज खुद सोनीपत स्थित ट्रेनिंग सेंटर में उनसे मिले। आइए सुनते हैं क्या कहा नरसिंह यादव ने।
स्टेट के हैं, उसका भी फर्क पड़ता है, बट यहाँ के जो कुछ अधिकारी हैं वो भी सब मिले हुए हैं। देखिए, मुझे डाउट है जो यहाँ की लेडी डायरेक्टर है वो मिली से हो सकती है, क्योंकि देखिए कुछ भी हद तक हो सकता है, बहुत बड़ी प्लानिंग है मेरे खिलाफ और जानबूझकर मुझे फंसाया जा रहा है। ओलंपिक्स इतने पास और मैं डोप क्यों लूँगा? इतने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में खेल चुका हूँ, हर जगह मेरा डोप टेस्ट होता है, सब कुछ ठीक रहा है, ओलंपिक में मेरा डोप टेस्ट होना है, सब कुछ मुझे क्लियर पता है, तो ऐसे मैं क्यों करूँगा? और मेरे साथ साथ मेरे रूम पार्टनर का भी डोप पॉजिटिव आया है, जो कि उसका तो कोई कंपटीशन नहीं हो, डोप क्यों लेगा? आज सतपाल इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे एक हफ्ता पहले से पता था, जब मुझे ही नहीं पता था तो सतपाल को कैसे पता चल गया कि मैं डोप में हूँ? इसका मतलब तो अंदर उनकी सेटिंग है या उन्होंने कुछ करा है, तो सब मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रही जा रही है, मुझे ओलंपिक्स जाने से रोका जाए। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से इसकी पूरी CBI जांच होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी के भविष्य की बात होती है, लोग ऐसे तो स्पोर्ट्स करना छोड़ देंगे, इतने ऊंचे स्तर पर आके लोग ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं और उसे ऐसे खाने में कुछ डाल के, आप ही आए, मैं आपको चाय ऑफर करता हूँ, जब चाय पिए आपको तो पता नहीं उसके अंदर क्या डाल रखा है। उसी तरह हमारा रूम है, यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ पे चाबी रखी जाती है, पीछे से किसी ने हमारे सप्लीमेंट्स मिला दिया है, हमारे यहाँ मेस में खाना बनता है और मेस में खाने में किसी ने डाल दिया, तो इतना तो आदमी कौन देखेगा, बता रहे।
जैसे ही सबसे पहले आपको पता चला कि आप डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कितना बड़ा झटका था आपके लिए?
बिल्कुल, ये मेरे लिए मतलब मायूसी वाली खबर थी और मैं खुद शौक था कि मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ लिया ही नहीं, तो इसे डोप में क्यों आया? पिछले 15 सालों से रेसलिंग कर रहा हूँ और हर जगह मेरा डोप टेस्ट होता है, जब मैं इंटरनेशनल लेवल जाता हूँ वहाँ कम्पीट करता हूँ, तो इसके पहले भी मेरा 2 तारीख को डोप टेस्ट हुआ था, सब कुछ ठीक हुआ था
और सेकेंड टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो आपको लगा कि तब आपकी घबराहट ज़्यादा बढ़ी?
देखिए, फर्स्ट सेकेंड टेस्ट दो सैंपल होते हैं, तो आना ही एक ही में, एक ही पेशाब का दोनों सैंपल रहता है, ए और बी, तो वो तो सेम ही आना ही था, क्योंकि ए में किया होगा तो बी में तो आएगा ही।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की जानकारी बृजभूषण चरण सिंह से मांगी, तो आपको लग रहा है कि आपके मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल लिया जाना चाहिए भी, क्योंकि एक देश का सवाल है, ठीक है, सिर्फ नरसिंह यादव का सवाल नहीं है, कल को लोग स्पोर्ट्स किस बेस पे करेंगे? आप यहाँ देखेंगे कि मोस्टली हरियाणा दिल्ली के लड़के देखेंगे, बाहर स्टडी क्यों कम लड़के हैं, क्योंकि उनके कोई जनरल सपोर्ट नहीं होता, ऐसे करके लड़कों को फंसा दिया जाता है। अब मैं यूपी का या मुंबई से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से अब मैं यहाँ रेसलिंग कर रहा हूँ, अब इस तरह की घटनाएं होंगी तो आगे भविष्य में कौन स्पोर्ट्स करेगा, समझ रहे हैं?
जो आपका रूम पार्टनर है संदीप तुलसी, उसके तो नमूने में इतना ज्यादा पाया गया है कि कोई ऑर्डिनरी खिलाड़ी भी नहीं लेगा। जब
संदीप यादव मेरे लिए रुका है, मेरी ट्रेनिंग कराने के लिए रुका है, तो उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो वो क्यों डोप लेगा? और जो भी है किसी जानबूझकर खाने में या किसी सप्लीमेंट से मिलाया गया जिससे कि आया है, और मेरा वेट इस समय 80 kg है, मुझे 74 में खेलना है, मुझे खुद वेट रिड्यूस करना है और ओलंपिक इतने पास है, 5 दिन बाद ओलंपिक चालू हो रहे हैं।
और सुशील कुमार ने जो ट्वीट किया कि सम्मान हासिल किया जाता है, मांगा नहीं जाता,
पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट कर रही है, बस 2 ही लोग अगेंस्ट बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, सुशील कुमार सतपाल जी। और मैंने किसी से भीख में कुछ नहीं मांगा, मैं उसका पहला रेसलर हूँ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक क्वालीफाई किया है, और वो मेरा हक है कि मैं ओलंपिक जाऊँ, और बाकी जो भी था मांग तो रहे थे, कोर्ट केस वो कर रहे थे, सब कुछ उनका था, बाकी इस तरह के बड़े खिलाड़ी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, वो इसी शोभा नहीं देता।
नरसिंह यादव से बात कर रहे थे आदेश गुप्त। और अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर।
मणिपुर में 16 साल से एफ्सपा के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला अपना उपवास तोड़ेंगी। उत्तरी फ्रांस के शहर रोयन में चाकू से लैस 2 हमलावरों ने एक चर्च में घुसकर एक पादरी की हत्या कर दी है। थाईलैंड में 3 प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्रिटेन में हेट क्राइम के मामले में पुलिस जिस तरह बर्ताव करती है, ब्रिटानी सरकार ने उस पूरी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। दक्षिणी चीन में स्थित तिब्बती बौद्ध इंस्टीट्यूट को चीनी अधिकारी तोड़ रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट को बौद्ध धर्म की शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में शुमार किया जाता है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।